फिर अपने कुफर में इतने बड़े हुए हैं कि मरियम पर सख्त बुख्तान लगाया और खुद कहा कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल किया। हाईलाइट करेंगे, कोई कौम खुद इकरारे जुर्म करती है कि हाँ हमने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल किया, उस कौम के किरदार का आप अंदाजा लगा सकते हैं। पीछे हमने कत्ले खता और कत्ले अमद का फर्क देखा इसी सूरत में कि बाय मिस्टेक या पर्पसली किसी को कत्ल किया जाए तो ये कितना बड़ा जुर्म है, और जितने बड़े इंसान को मारेंगे ना उतना जुर्म बड़ा होगा। दुनिया में सबसे बड़े इंसान कौन होते हैं? अंबिया। तो जो कौम खुद कह रही है यस हमने कत्ल किया ईसा इब्ने मरियम को, फिर उसके जुर्म के अंदर किसी को शक हो सकता है? ये दावा था उनका। अब सवाल पैदा होता है कि इन्होंने क्यों कत्ल किया, ज्यूस ने हजरत ईसा को क्यों कत्ल किया? थोड़ा सा समझिए, क्योंकि अब यहां अगर आप इसके मिजाज को समझ रहे हैं तो दो शरीयतें मिल रही हैं, क्योंकि अब सूरत मायदा शुरू होने वाली है जिसमें उम्मते मुस्लिमा की शरीयत की कहानी है। यहां वो जो दुआ मांगी थी ना गैरिल मकदूबी अलैहिम वलद्दालीन, वो पूरी होती हुई दिख रही है। हमने सूरह बकरा में ज्यूस के बारे में पढ़ा और सूरत आल इमरान में कसरत से हमने हजरत ईसा और उनके कौम के अकायद को पढ़ा। अब सूरत निसा के एंड पे अल्लाह ताला यहूद और नसारा के जो आपस के इख्तलाफात हैं उनकी बात बता रहे हैं। तो इसको समझ लीजिएगा कि जब अल्लाह ताला ने तौरात दी बनी इसराइल को, दी पूरी सही गाइडेंस थी, उसमें वही चीजें थी मोस्टली जो कुरान में आज मौजूद है। लेकिन क्या हुआ कि इनके मजहबी रहनुमाओं पर जब जवाल नाजतारी हुआ तो उन्होंने उसमें चेंजेस कर दी, उसको बुक की बजाय वर्क बुक बना दिया। जब वर्क बुक बना दिया तो उसका नुकसान क्या हुआ कि उसमें बहुत सारे मसाइल बदल गए। वक्त के साथ साथ लोग ऐसे ही यूज्ड टू हो गए। अब हुआ क्या कि जब किताब में बहुत सारी चीजें बदल गई तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को भेजा, और हमेशा ऐसा ही रहेगा। जब लोग अल्लाह की किताबों को भूल जाते हैं, अल्लाह की किताबों पर अमल नहीं करते या उसको चेंज करते हैं तो अल्लाह भेजते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने असल में ज्यूस के जो स्कॉलर्स थे उनकी की हुई चेंजेस को खोला था, वो कह लीजिए जो ख्यानतें थी उनकी कि उन्होंने लोगों से पैसे ले लेकर फतवे बदल दिए। मिसाल है कि दौरात में ये था कि कोई कत्ल करेगा तो उसके बदले में कत्ल है, अब यह आयत मौजूद थी। अब होता क्या कि इनके किसी कबीले का कोई बड़ा शख्स कत्ल करता तो इनके लोग उस प्रीस्ट के पास आते और उसको कहते कि देखो हम तो नहीं अपने इस बड़े शख्स को मरने देंगे, तुम क्या करो कि हमसे पैसे ले लो और पैसे लेने के बाद क्या करो कि इधर मसला बदल दो। वो क्या करते, उसी तौरात की आयत पे जाकर कि कत्ल के बदले में कत्ल है, मगर मिसाल है कि बनू कुरैजा का या बनू कैनका का कोई शख्स कत्ल करे तो वो एग्जेम्प्टेड है, ये जुमला लिखा दिया। अब इसे हुआ क्या कि दीन प्ल्यूट हो गया ना, अल्लाह की मर्जी बदल गई दूसरों की मर्जी के अंदर। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर लोगों को प्योर दीन दिखाया। जब हजरत ईसा आके इन ख्यानतों को खोलते तो उस दौर के जो मजहबी स्कॉलर्स थे बनी इसराइलियों के वो आपके दुश्मन हो गए। इसी में एक बुरा काम जो इस कौम ने किया वो क्या किया कि सूद का काम खुल के करने लगे, हत्ता के बैतुल मकदस जिसको जरूसलम आप कहेंगे उसके अंदर बैठकर ज्यूस के जो बड़े बड़े लोग थे दौलतमंद और असर और रसूख वाले वो सूद का काम करते थे। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर उन पर जब तनकीद की और उनको बताया कि देखो तुम ये काम छोड़ दो ये गलत है, और पूरे इनके जुमले मौजूद हैं आज इनकी किताबों में, इस वक्त तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो सब कुछ तारीख ने सब कर दिया कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इनको डांटा कि तुमने अल्लाह के घर को चोरों का भट्ट बना लिया और उसी में तुम सूद का काम कर रहे हो जो तुम्हें रोका गया, बस ये था वो नुकता जिस पे इनके मजहबी स्कॉलर ने सोचा अब इस शख्स को मरवाओ, ये तो अब हमारे माल पे आ गए। जहां भी याद रखे मनी मैटर्स पे तनकीद होगी वहां लोग दीन के खिलाफ होंगे। उन लोगों ने जाकर उस मुल्क के बादशाह जो उस वक्त का था जालिम उससे राबता किया, खुद तो मरवा नहीं सकते थे। इस तरह से हजरत ईसा को सूली पे चढ़ाने का फैसला हुआ, ये सारी वही बातें हम पढ़ रहे हैं। और हजरत ईसा को सूली पे चढ़ाने की कोशिशें उन्होंने की लेकिन अल्लाह ने उनको ऊपर उठा लिया, ये सब चीजें हम इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे। दोबारा इसी सारी सोच के साथ देखिएगा। وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله, और उनके इस कौल के बदले में यानी इन्होंने जो ये बाकी बातें तो थी वो है ही थी कि हजरत मरियम पर इल्जाम तो लगाते थे, बल्कि खुद कहा कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम जो रसूलुल्लाह थे उनको कत्ल कर दिया, हालांकि फिल वाके ना तो उन्होंने उनको कत्ल किया ना सलीब पर चढ़ाया, बल्कि मामला इन पर शुबे वाला कर दिया गया, और जिन लोगों ने इनके बारे में इख्तलाफ किया वो भी दरअसल शक में मुबतला है, इनके पास इस मामले में कोई इल्म नहीं महज गुमान ही की पैरवी है। और अब अल्लाह का फैसला सुन लीजिए, वमा कतलूहु यकीना, हरगिज उन्होंने उनको कत्ल नहीं किया। देखिए यहूद और नसारा का हजरत ईसा के बारे में कॉन्सेप्ट क्या है, यहूद कहते हैं हमने कत्ल करके काम खत्म कर दिया, नसारा के डिफरेंट सेक्ट्स हैं, डिटेल नहीं इस वक्त दे सकते, लेकिन उनमें से आम तौर पे क्या कहते हैं कि ईसा कत्ल तो हो गए थे, लेकिन फिर वो गुड फ्राइडे जिसको ईस्टर के नाम पे रखते हैं कहते हैं उस दिन जिंदा हो गए थे। कुछ का ये है, कुछ कहते हैं कि फौत हो गए थे लेकिन अभी भी जिंदा है, कोई कुछ कहते हैं। अब मुस्लिम क्रीड के वमा कतलूहु यकीनन, 100 से ज्यादा हदीसें तवातुर के साथ मौजूद हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनका हाल हुलिया, उनके बालों की लंबाई, उनके जिस्म से पानी के कतरों का गिरना, किस जगह आएंगे, लुत के मुकाम पे आएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे, फिर यानी अल्लाह के नबी की उम्मत से होंगे, फिर उनकी मौजूदगी में दज्जाल निकलेगा, उसका मुकाबला होगा, उसको अल्लाह ताला उनके हाथ से मरवाएगा, फिर दुनिया में अमन और चैन होगा, फिर वो शादी करेंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर अपनी तबई मौत फौत होंगे, और उसके बाद नबी सल्लम के पहलू में मदीना में दफन होंगे। ये सब हदीसें मौजूद हैं। इसके बावजूद आज मुसलमानों में से ये गिरोह ऐसा है कि जो इसका कायल नहीं है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि इल्म के साथ हम अपने बच्चों को बचाएं। बाद दफा आप देखिए कि जब हम बाहर निकलते हैं मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में, डिफरेंट सोच के लोग होते हैं ना। चले एक तो वाजे तौर पर कहते हैं मुसलमान नहीं है, लेकिन मैं आप सबको एक बात नसीहत की कहूंगी, अपने बच्चों के दोस्तों पर नजर रखें जिनको इवन आप कहते हैं मुस्लिम है, लेकिन आपको कहते हैं मुस्लिम्स में भी दो तीन कबीले ऐसे हैं कि जिनके अकायद सरासर कुफरी और शिरकी हैं, कि जिनके लिए कुफर के फतवे मौजूद हैं। अब जब दिन रात साथ रहते बैठते हैं तो वो फर्क मिटता है, फिर शादियां होने लगती हैं, फिर जो मुसीबतें आगे आती हैं उस अल्लाह ताला की पनाह में, तो मुसलमान कहलाने वाला एक गिरोह खुद को कहता है ईसा नहीं आएंगे, आ चुके, वो खुद को मसीले मसीह कहकर अपने नाम के साथ कुछ, वो कहते हैं ये लुध नहीं लुधियाना था और कादियान में ये काम हो चुका। तो आज के दौर का ये बहुत बड़ा फितना, चूंकि ये ऑर्गेनाइज लोग होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पुश्त पनाही है बड़ी हुकूमतों की, तो ये फिर अपना दीन आम करते हैं। अखलाक के इतने आला होंगे कि आप इन जैसे अखलाक किसी का नहीं देखेंगे, तो लिहाजा किसी से बात करें, किसी जगह रिश्ता नाता करें, पहले चेक कर लें कि उस बच्चे का दीन क्या है, मजहब क्या है। तो आज इस मसले में जो सरासर खुला हुआ है, उन्होंने इसको साबित कर दिया कि ईसा नहीं आएंगे बल्कि उनकी जगह पे कोई और आ चुका। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे ईमान की हिफाजत कर दे। फिर फरमाया उन्होंने यकीनन मसीह को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इनको अपनी तरफ उठा लिया। मुमकिन है अल्लाह किसी को जिंदा जिस्म के साथ ऊपर उठा सकता है? बिल्कुल उठा सकता है, रूह भी तो जाती है ना, तो जिस्म मट्टी में दबाने की बजाय अगर साथ चला गया तो क्या बड़ी बात थी। अल्लाह ताला जबरदस्त ताकत रखने वाला और हकीम है, अहले किताब में कोई ऐसा ना होगा जो उसकी मौत से पहले उस पर ईमान ना ले आए, सुभान अल्लाह, और क्यामत के रोज वो इन पर गवाही देंगे। गरज इन यहूदियों के इसी जालिमाना रवैये की बिना पर, और इस बिना पर कि ये बकसरत अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और सूद लेते हैं जिससे इनको मना किया गया, और लोगों के माल नाजायज तरीके से खाते हैं। हमने बहुत सी पाकीजा चीजें इनके लिए हराम कर दी जो पहले से इनके लिए हलाल थी। ये आयत 161 का शुरू का हिस्सा हाईलाइट कीजिएगा, वख्ज़िहिम अर्रिबा वक़द नुहू अन्हु। कुरान के लफ्जों को अगर आप वर्ड टू वर्ड में भी जाके देख लेंगे, व और अख्जी हिम लेना इनका रिबा सूद को, व और कद तय की नुहू व रोके गए थे, पैसे वॉइस है ये अनहु से। किस बात की दलील है कि जैसे इस्लाम में सूद हराम है इसी तरह बनी इसराइलियों पर भी सूद हराम था। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि आज पूरी दुनिया का निजाम जो इंटरेस्ट बेस्ड है वो इन्हीं के 200 खानदानों के हाथ में। इस पे हमने काफी डिटेल से बात की थी कि ये जो दुनिया में आज बैंकिंग सिस्टम है ये कहाँ से चला था, इसके पीछे ये इंटरेस्ट बेस्ड सब कुछ। और आज आपको हैरत होगी कि बड़ी बड़ी ताकतें वो 200 खानदानों की इस वक्त मकरूज हैं कि जिन्होंने ये सारा निजाम रखा। इस कौम की रगो रेशे में सूद फंसा हुआ है। आज पूरी दुनिया में ये जो इकोनॉमिकल टेररिज्म है ना, कि पैदा होता बच्चा भी सूद में है और दुनिया से जाने के बाद भी उसकी किस्तें नहीं खत्म होती, इसके पीछे यही जहन है। आप इसकी हिस्ट्री खुद पढ़ के देखें, आप कांपने लग जाएंगे। आप एक पूरा जाल फैला हुआ इस वक्त पूरी दुनिया में, कुछ लोग उसको दज्जालियत कहते हैं, कोई इसको कुछ कहते हैं। और ये सजा है इस बात की कि वो कौम जिसको अल्लाह ने उनकी किताब में इस चीज से रोका, जब आज पूरी दुनिया को उन्होंने तिगनी के नाच पे नचाया, ये कागज के नोट कहाँ से आए, ये पहले नहीं थे। देखिए इस्लाम ने हमेशा मनी जो है ना वो गोल्ड और सिल्वर में रखी थी। थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट दिलवाने के लिए बता देती हूँ कि आज से ज्यादा अरसा पुरानी बातें भी नहीं है, ये 100-200 साल पुरानी बात है, सिर्फ 19 सेंचुरी के शुरू की बातें कर ले, कि सारी दुनिया में एक ही सिक्का चलता था। आप अमेरिका में बैठे हैं आपका डॉलर है, अगर आप पाकिस्तान में आपका रुपया, लेकिन दोनों मेड ऑफ गोल्ड थे, कागज के टुकड़ों पर नहीं छपता था। फर्क इतना था कि अमेरिका के गोल्ड पे उस पर अमेरिका की मोहर थी, पाकिस्तान में पाकिस्तान की थी। अब सफर में गोल्ड अपने साथ रखते हैं अमेरिकन सिक्कों की सूरत में, चाइनीज सिक्कों में या पाकिस्तानी, जहां आपको पैसे खर्च करने थे जरूरत पड़े आप ज्वेलर के पास जाते हैं, आप अपना गोल्ड बेचते हैं, जो उसका वेट होता था आपको मिल जाता था। सारी दुनिया की एक करेंसी थी, ये 1 और 100 का फर्क कहां से आया, ये 100 180 का फर्क कहां से आ गया, ये कागज के रातों रात कागज के नोट बने, ये सब इस कौम की कहानी है। उन्होंने लोगों का गोल्ड पहले लिया, पहले दुनिया में बहुत कहते हैं बेरोजगारी पैदा की, फिर लोगों को खौफ दिलाया कि चोरियां बहुत होंगी, तुम अपना गोल्ड हमें दे दो। लोगों ने इनको गोल्ड दिया कि चलो सिक्योर है, रखा कुछ अरसे बाद इनको ख्याल आया कि गोल्ड लोगों का हमारे पास पड़ा, हम इससे कुछ कर ही नहीं रहे। अब डर सिर्फ ये था कि लोग हमसे वापस ना मांग लें, तो इन्होंने लोगों को ऑफर दी कि लोगों अगर क्या ख्याल है आपका गोल्ड हम रख लें और उसकी जगह एक स्लिप आपको दे दें, ये जो आज मेरे आपके इस नोट है ना बिल, पहले स्लिप होते थे, वो कहते थे ये स्लिप रख लो, दैट मीन कि वेन एवर यू विल कम वी विल गिव इट यू बैक। लोग बड़े खुश हुए, अच्छा ये स्लिप बन गई। अब जब स्लिप बन गई कुछ अरसा लोग इसमें रहे, फिर इन्होंने एक और ऑफर दी, कहने कि आपके जितना गोल्ड है सारा ला के हमारे बैंकों में जमा करा दें तो हम आपको फायदा क्या देंगे कि जो गोल्ड आप हमारे पास रखते हैं हम उस पर 10% आपको पैसा भी देंगे। लोग बड़े खुश, घर में गोल्ड पड़ा है तो चोरों का डर और कुछ बढ़ भी नहीं रहा, इनको दे रहे हैं, एक तो ये हमारा सिक्योर कर रहे हैं और दूसरी बात है ये हमें 10% दे रहे हैं। लोगों ने सब सोना चांदी निकाल कर इनके हाथ में दे दिया और उसके बाद क्या होगा ये तो एक लंबी कहानी है। वल्लाही हम सो रहे हैं। मैं कहती हूँ उम्मत मुस्लिमा को अगर उम्मत वसत बनना है आज इकोनॉमिकल इश्यूज अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। और याद रखिए मैंने खुद एक रिपोर्ट में पढ़ा कि अब दोबारा दुनिया में ये आवाजें उठ रही हैं कि कागज के नोट खत्म करो, ये जो आज आपकी मेरी चेक बुक है ना ये उसी की यादगार है। फिर ये क्रेडिट कार्ड में बदल गया, फिर रातों रात सोना सोना खत्म हो गया, लोगों को कहा कि आपका सोना 5 साल तक अब नहीं देंगे आपको, बेच के खा पी के उससे अपनी ऊपर इन्वेस्टमेंट्स कर दी और लोगों को कागज के नोटों से हिसाते रहे। बैंक खाली था बिल्कुल, लोग सोचते थे हमारा गोल्ड सारा बैंकों में पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं था अंदर। लेकिन इस तरह से ये बैंकिंग सिस्टम जो आज पूरी दुनिया में आ चुका है ये इन चीजों से शुरू हुआ था और इस वजह से इस कौम ने आज पूरी दुनिया को, या आज जिस मुल्क में मैं और आप बैठे हैं ये उनके मकरूज हैं। ये बेचारे कहने को बड़े बड़े मुल्क हैं लेकिन असल में इनकी अपनी इकोनॉमी इनके हाथ में नहीं, क्योंकि मेन कंट्रोल उधर है, पूरे पूरे घर इनके सोने की ईंटों के साथ भरे पड़े हैं, इतना पैसा इन लोगों के पास और ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। इसलिए आज मुझे और आपको इसकी जरूरत है। हम मुसलमान अगर इस्लाम का इकोनॉमिकल सिस्टम पढ़ते हैं, अपने बच्चों को ट्रेन करें, आप ऐसी यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बनाते कि जहां इस्लामिक नॉलेज पढ़ाए जाए। देखिए दुनिया की चीजें तो पढ़ने पढ़ाने में बहुत कुछ आ गई, एक बचपन से पैदा होकर बच्चा इस्लाम सीखने वाला जब चले मास्टर्स तक भी पहुंचता है उसको 19 20 21 की बिकी पता होती है, वो कभी बेवकूफ नहीं बनेगा। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी आंखें खोले। इस वक्त हाल वही है जो अल्लाह के नबी ने कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा हर बंदे के मुंह में सूझ जाएगा, कुछ नहीं है तो उसके मुंह नाक के रास्ते गुबार तो जाएगा। आज आप देखिए जकड़े में, लेकिन इससे निकलेंगे कैसे, बहुत ईजी है। आज लगता है कि हम नहीं निकल सकते लेकिन हम उससे निकलेंगे जब हम सो के उठेंगे। याद रखिए इस पूरी दुनिया का नसीब उम्मत मुस्लिमा ने बदलना, क्योंकि इस्लाम इज अ कंप्लीट वे ऑफ लिविंग। इस्लाम ने जो रूल्स और रेगुलेशंस और ये जो दिए मेथोडोलॉजीज, ये सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म और सोशलिज्म और डेमोक्रेसी, ये तो खेल खिलौने हैं, ये मैन मेड लॉज हैं, अल्लाह के लॉज हैं। अब अगली सूरत मायदा पूरी अल्लाह के लॉज हमें पढ़ाएगी, शरीयत जिसने समझनी है वो सूरत मायदा को पढ़े। इसलिए सूरत के एंड पे अल्लाह ताला हम सबको कह रहे हैं ला के निर्रासिखून फिल इल्मी, लेकिन वो लोग जो इल्म में पुख्ता है, इल्म का रसूख पैदा कीजिए। इस वक्त मैं कहती हूं उम्मत मुस्लिम अपने सारे रिसोर्सेज नॉलेज पे लगा दे, खुद भी सीखे, नस्लों को भी सिखाए, दूसरों की मदद करे। 2 4 10 साल की खेल है, इस दुनिया का नक्शा बिल्कुल फर्क होगा और लोग हमें दुआएं देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुसलमान जाग के काम करेंगे तो नॉन मुस्लिम उनको दुआएं देंगे। देखिए ऐसे ही है ना कि एक हॉस्पिटल है उसमें बहुत सारे बीमार हैं और डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी, तो बीमार बद दुआएं देंगे ना उनको कि तुम्हारी कमी की वजह से हम मारे गए या हमें तकलीफ हुई। जिस दिन उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्सेस काम पे आके काम करेंगे तो मरीज क्या होंगे, सेहतयाब होंगे, तो जब वो सेहतयाब होंगे तो डॉक्टर्स को क्या देंगे, दुआएं देंगे। तो मैं और आप कौन है इस दुनिया के, डॉक्टर्स हैं। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हम काम करेंगे लोग हमें दुआएं देंगे। आज बद दुआएं क्यों, आज गालियां क्यों पड़ती हैं, हमने काम छोड़ा हुआ, हम हड़ताल पे गए हुए डॉक्टर्स हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी आंखें खोल दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं और लोगों के माल नाजायज तरीकों से खाते हैं और हमने बहुत सी पाक चीजें इनके लिए हराम कर दी जो पहले से इन पर हलाल थी, और जो लोग इनमें से काफिर हैं इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है, मगर इनमें जो लोग पुख्ता इल्म रखने वाले हैं और ईमानदार हैं वो सब इस तालीम पर ईमान लाते हैं जो है नबी तुम्हारी तरफ नासिल की गई और जो तुमसे पहले नासिल की गई थी, اسی طرح کی ایمان لانے والے اور نماز و زکاة کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اللہ کی تسلیاں کتنی جلدی آ جاتی ہیں کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں, بس تم جم جاؤ, تمہیں یقین آ جائے تم کون ہو, تو پھر دیکھو تمہیں کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا, نبی ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. ہم نے ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب, عیسیٰ, ایوب, یونس, ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی. ہم نے داؤد کو زبور دی. ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ پر کر چکے ہیں, اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا. ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے. یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد اللہ کے پاس مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے, اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. دیکھیے بار بار اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی کو ثابت کرتے ہیں کہ میں نے ہر حجت تمام کر دی, اب آگے تم جو چاہو. لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے, مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے, اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں. اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے, جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں. اسی طرح جن لوگوں نے کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے, اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا. آج ہے بغاوت اللہ کے قوانین سے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے اور لوگوں کو بھی ہم اسی چیز کی دعوت دیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت کو چھوڑ کر عاجزی اور سبمیشن پہ آ جائیں.